Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say, Mubarak for you, it's my prayer. May you keep ascending success. Say.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک شخص نوجوان تھا اور اس کی خواہش یہ تھی کہ میں رات کو تو سوتا ہوں، مجھے دن کو بھی نیند آ جائے اور میں دن کو بھی ڈے نائٹ نیند کرتا رہوں۔ اس نے ایک عقل مند شخص سے بات کی اور کہا کہ مجھے طریقہ بتائیں، رات کو تو سوتا ہوں میں دن کو بھی سوتا رہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں چاہتے ہو، نیند آتی ہے، ایک لطف آتا ہے، ٹینشن نہیں ہوتا، بندہ سویا رہتا ہے۔ کہا، اے نادان، ویسے ہی رات کو جب تم سوتے ہو تو تم زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ نیند میں گزار دیتے ہو، اور جس طرح تم مجھ سے کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھی زندگی تو نیند میں گزارتے ہو، تم اس سے بڑا حصہ بھی نیند میں گزارنا چاہتے ہو۔ کبھی سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہا، اگر تیری عمر 40 سال ہے تو 20 سال تو سوتے میں گزار رہا ہے، مزید 10 سال اور مائنس کرنے کے چکر میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ اب اگر تیرے یہ بھی مائنس ہو گئے تو تجھے آخرت کی تیاری کا وقت ملا کتنا؟ تو کیا آخرت کی تیاری کرے گا، دنیا اور آخرت کی کیا بہتری کرے گا؟ یوں کر کے انہوں نے اس نوجوان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے وقت کی قدر کرو اور اپنے وقت کو ضائع مت کرو، سوتے میں وقت ضائع کرتے رہنے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، جو بچہ کچا ہاتھ آ رہا ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ یہ سمجھانے کی انہوں نے کوشش کی، ہمیں بھی سمجھا ہی رہے ہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، پیادے کو گھوڑا مناتا نہیں، جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ پھر وہ ہاتھ آتا واتا ہمارے ہے نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا سمجھانے کے لیے واقعہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ایک برف فروش کو دیکھا جو برف بیچ رہا تھا، آئس سیل۔ اس شخص جو برف بیچ رہا تھا آواز یہ لگا رہا تھا، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے، اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھلا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ عصر میں جو ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں ہے، انسان خسارے میں ہے، میں نے اس برف فروش سے اس آیت کریمہ کی تفسیر کو سمجھا ہے کہ جو اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں یہ نقصان میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے زمانے کی قسم یاد کی گئی، والعصر، زمانے کی قسم۔ تو وقت اور زمانہ ایک اپنے اندر ایک امپورٹنس رکھتا ہے۔ اب یہ برف پگھل رہی ہے، آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں، فار ایگزامپل کہ اس کی برف 1200 روپے کی تھی اور یہ اسے 1400 روپے میں بیچنا چاہتا ہے، 1200 روپے کی برف کو وہ 1400 میں بیچنا چاہتا ہے، لیکن اگر برف 600 روپے تک کی پگھل گئی अगर ये पूरी बर्फ बेच भी देगा तब भी इसको तो लॉस ही है ना, तब भी इसको फाइनली तो लॉस ही होना है कि उसने जितना नफा कमाना था उसे ज्यादा का तो वो नुकसान कर चुका, उसकी बर्फ पिघल गई। तो क्या कह रहा था, ए लोगों उस शख्स पर रहम करो जिसका सरमाया पिघला जा रहा है। वो या कि इंसान को ये बात समझाई जा रही है कि तेरी जिंदगी जिस तरह पिघल रही है, हमारी जिंदगी जिस तरह पिघल रही है, फिर गुनाहों की तपिश इतनी पड़ रही है हमारी जिंदगी पर, इतनी तेजी के साथ पिघल रही है कि मत पूछिए बात। मगर जिसको एहसास नहीं है उसको एहसास नहीं है, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तमाशे कर रहे हैं। हमारे बुजुर्गों ने वक्त की बड़ी कदर की और वक्त के ऐसे ऐसे कदरदान गुजरे हैं, बल्कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हजरत सईदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैं उस दिन बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता हूँ कि जिस दिन कोई नुमाया काम सर अंजाम नहीं दे पाता और मेरे अमल में कोई इजाफा नहीं हो पाता। पूरा दिन गुजर गया, आपका भी गुजर गया, मेरा भी गुजर गया, हमारे लिए एक नया दिन है। तो कल का जो हमारा वक्त गुजरा, उस वक्त में हमने क्या हासिल किया, क्या इल्म में इजाफा हुआ, क्या कोई ऐसा काम सर अंजाम दिया कि जिसको आप कहें कि यार आज का दिन बड़ा, जैसे बाज लोगों का जो कारोबारी लोग होते हैं, यार आज दिन बड़ा अच्छा गुजरा, क्यों बड़ी बड़ी यार दो चार अच्छे लग गए, यार आमदनी अच्छी हो गई, उनका ऐसा हुआ ना कि कुछ इजाफा हुआ। हमारे में क्या इजाफा हुआ, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, नॉलेज में इजाफा हुआ, ना नेक अमाल में इजाफा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। दिन आया और गुजर गया और सब खत्म हो गया। ये हमारे लिए गौर करने की बातें हैं। इसी तरह एक और बुजुर्ग के बारे में मैं पढ़ रहा था, हजरत सैयदना इब्ने अकील अलैहिर्रहमा अपने खाने का वक्त बहुत मामूली रखते, केक नुमा सादा खाने को रोटी की निस्बत इसलिए पसंद फरमाते कि रोटी चबाने में ज्यादा वक्त सर्फ होता है, तो वो रोटी की जगह पर उसको केक जैसा बना लिया करते थे ताकि वो जल्दी खा लूंगा तो खाना खाते हुए जो वक्त जाया होता है ना वो मैं बचा लूंगा, उस पर मैं उनको एक दावत फिक्र देता हूं। जो सिर्फ खाने की शौक में और सिर्फ खाने की उसके अंदर दो दो पांच पांच छह छह घंटे गुजार देता, मैं नाम नहीं लेता मुल्क का, आउट ऑफ कंट्री बात करता हूँ, वेस्टर्न कंट्री थी, दावत इस्लामी के दीनी कामों से मेरा जाना हुआ, तो कुछ ऐसा मतलब यू समझे कि रात को ही बयान था, तो बयान के बाद खाने का वक्फा था, उसके बाद मुलाकात वगैरह भी करनी थी, तो सब खाने जब बयान खत्म हुआ तब खाना शुरू हुआ, खाना शुरू हुआ तो मुझे भी इस टाइम मैंने कहा आप यहाँ बैठ जाइए, हमने नीचे बैठ कर खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जल्दी खा लो इस्लाम भाई, ये सब खाकर फारिग हो जाएंगे, मुलाकात वगैरह सब करनी है। वहां का थोड़ा निजाम ही ऐसा था, उन्होंने कहा आप तसल्ली से खाएं, मैंने कहा मैं तो तसल्ली से खा लोगे ये चले जाएंगे। अच्छा हम खाकर फारिग हो गए, अब पता चला कि इनका अब ये पहला आया है डिश, फिर दूसरी डिश आएगी, फिर तीसरी डिश आएगी, ये तकरीबन दो ढाई घंटे तक ये खाना खाएंगे। मैंने कहा ये दो ढाई घंटे खाना है क्या, मैं तो कराची से हैदराबाद पहुंच जाऊंगा इतनी देर में, तो इतनी देर में खाली खाना खाएंगे, कल्चर है गलत सही ना जायज ना जायज इस पर बहस नहीं कर रहा, सिर्फ एक समझाने के लिए एग्जांपल कोट कर रहा हूं कि बस ये कल्चर ये बिल्कुल कल्चर है जो मैं आपको कह रहा हूं। और ये कल्चर अगर मैं कहूं कि हमारे मुल्क के अंदर आ चुका है तो मैं गलत नहीं हूं, मैं देख कर आया हूं। और ये है घंटों लगा देंगे खाने खाने में, और उसपे अगर कोई काम है बाद वक्त लोग क्या करते हैं, जो अक्लमंद भी टाइप के होते हैं या कुछ करने वाले लोग होते हैं, तो इन्होंने एक टर्म इजाद की है, एक लफ्ज इजाद किया है, वर्किंग ब्रेकफास्ट, वर्किंग लंच एंड वर्किंग डिनर, यानी कि नाश्ता करते हुए भी कोई काम कर लो, लंच करते करते भी काम कर लो, और डिनर करते करते भी काम कर लो, उनके पास वक्त कम है काम ज्यादा है, तो इन्होंने ब्रेकफास्ट को भी, नाश्ते को भी, लंच को भी और डिनर को भी इन्होंने वर्किंग लंच, वर्किंग डिनर और वर्किंग ब्रेकफास्ट बना दिया, ताकि हमारा ये खाते हुए भी जो वक्त है ना, ये भी हमारा किसी ना किसी काम में गुजरे। जब खाना ही खाना है तो बात भी हो जाएगी, खाना भी हो जाएगा, मशवरा भी हो जाएगा, काम भी हो जाएगा। इस तरह की अगर कोई मेंटेलिटी बनती है तो एक अलग टॉपिक है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लज्जतों के लिए डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की ड्राइव पर चले गए, फिर दो ढाई घंटे वेटिंग में चले गए, फिर दो ढाई घंटे खाने में चले गए, फिर दो ढाई घंटे आने में चले गए, ये पांच से सात घंटे भैया निकल गए उसके, एक टाइम का खाना खाया, इतना बड़ा बिल दे दिया। ये अब ऐसी कई मिसाल है, बैठे खाने के लिए पता ही नहीं कब खाना खा चुके, कब टाइम पूरा हो गया, ओहो ये तो बहुत देर हो गई यार, पता ही नहीं चला, और तुम्हें पता ही नहीं चला घड़ी है कि क्या है हाथ में, पता ही नहीं चला, मोबाइल में घड़ी अलग है, हाथ में घड़ी अलग है, दीवार पे घड़ी अलग है, तीन तीन घड़ियां थी, तुझे पता ही ना चला कि घड़ी कब बीत गई, ओहो करके खड़ा हो गया, देर हो गई। ये हाल है। अल्लाह पाक हम सबके हाल पर रहम फरमाए। अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फुज़ूलियात और लगवियात पे वक्त जाया करने वाले की सोहबत से पनाह मांगा करते थे। जो ऐसे लोग है ना, इनकी सोहबत से पनाह मांगते थे, या अल्लाह हमें इनकी सोहबत से बचा। तमाम देखने सुनने वालों को मैं हजरत अल्लामा इब्ने जौज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह की इस बात की तरफ गौर करने की दावत दूंगा। बैठे हैं, अरे भाई कुरान पढ़ लो, हदीस पढ़ लो, अल्लाह उसके रसूल का कोई जिक्र कर लो, दुरूद पाक पढ़ लो, कुछ आयात पढ़ लें, कुछ चार आयतों का तर्जमा और तफसीर पढ़ लें। हमारा टाइम जाया करते हैं। अब कहाँ का टाइम जाया होता है, मैं इसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। मुतकिफिन भी गौर करें। एक तो हमारा टाइम जाया होता है उठने में। अब आपका उठने का अलार्म रखा है आपने 8 बजे का, 8 बजे अलार्म बजा, बंद कर दिया, क्योंकि उसको आपने दोबारा कहा तो 8:15 बजे फिर बजना, फिर वो आपके कहने पर 8:15 बजे फिर बजता है, फिर आपने चुके 10-15 मिनट का फिर इसको ऑर्डर दिया हुआ, फिर वो बजेगा, आप उठना नहीं है, आपने हाथ मार के उसको थोड़ा सा ठंडा करना है तो थोड़ा ठंडा हो जा, फिर 10-15 मिनट के बाद चिल्लाना, फिर मैं तेरे को ठंडा करूंगा, फिर चिल्लाना, ये आधा पौना घंटा ये मोबाइल के साथ और बेल के साथ घंटी के साथ थोड़ा खेलेगा, उसके बाद जनाब खड़ा होगा। सोने से पहले आधा पौना घंटा एक घंटा मोबाइल के साथ गुजार देगा। उठने के बाद एक तो उठेगा नहीं, उठने के बाद फिर से कुछ अंगड़ाया लेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। अब घड़ी देखे ना, अगर पूरे दिन का अगर ये टाइम नोट करे ना, तो सिर्फ घंटा से 1.5 घंटा 2 घंटे 24 आवर के अंदर उसने कमो बेश 1 से 1.5 घंटा बगैर किसी काम के, कोई भी काम नहीं, अच्छा नींद भी नहीं हुई, 10-15 मिनट 10 मिनट करते, नींद थोड़ी को पूरी होती है भाई। जितने बजे आपको उठना था इतने का अलार्म लगा दो, अलार्म बजे और आप उड़ के बैठ जाओ। कामयाब लोग इसी तरह जीते, बल्कि कई कामयाब लोग वो हैं जिनको अलार्म नहीं उठाता, वो अलार्म को उठा देते हैं, उनको ऐसा सा जिम्मेदारी होता है। आपकी फ्लाइट होती है, अलार्म बजे ना बजे आपकी आंख खुल जाती है, यार जहाज तो नहीं चला गया, फिर देखते हैं नहीं नहीं यार अभी 1 घंटा बाकी है, सो जाओ। घड़ी से पहले कैसे उठ गए, एहसास से जिम्मेदारी ने उठाया था, किसी काम के टेंशन ने आपको उठाया था। क्या बात है कि फजर में नहीं उठते, फिर फजर का टेंशन नहीं है। तो ये जो एक तबका है जो सोता है तो उठता नहीं, उठता है तो सोता नहीं, ले भाई अब करे तो क्या करे, ये बड़ी कहानी है। और ये इतना अपना वक्त जाया कर रहे होते हैं अल्लाह की पनाह, इतना वक्त जाया कर रहे हैं। एक और खाने के लिए बैठेंगे तो उठेंगे नहीं, बैठे हैं गप्पे लगा रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, फिर डट कर खाएंगे, फिर कहेंगे यार उठा दो, उठा नहीं जा रहा, अरे भैया इतना डट के खाने की जरूरत है, चार आदमी आकर आपको उठाएंगे, को मैय्यत तो इंसान हो, अब उठाने के लिए जब रू निकल जाएगी तो लोग आएंगे उठाने के लिए आपको, भाई अभी क्या जरूरत है, हल्का फुल्का रहे, डट कर खाकर अपने आप को नुकसान ना पहुंचाइए। ये आपको समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह मुझे भी अक्ल सलीम अता फरमाए और मुझे भी समझने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह मेल जो रखने में वक्त जाया करना, बाकायदा उसकी फहरिस्त है कि बंदा कहां वक्त जाया करता है, بھیجا میل جول اور سناؤ کیا کر رہے ہو. ہاں پاری کو چلو آؤ نا. کیا کام ہے؟ گپے شپے لگائیں گے. لے بھائی اس کو گپے شپے لگانے. یا قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا, نماز صحیح پڑھنے نہیں آتی, قضا نماز اس کے پلے ہیں, بات سمجھ رہے نا, اور اس کو کیا لگانا ہے؟ گپ شپ گپ شپ گپ شپ گپ شپ گپ شپ لگانا. موبائل کا پیکج بھی ڈھونڈتا ہے جس کے اندر گپ شپ لگانے کی پیکج الگ ہو. لے بات بات کر, فری بات کرو بھائی. بات فری نہیں ہے, بات فری نہیں ہے, بات عمل ہے. جو ہم کر رہے ہیں ہمارا وقت خود ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. جو بات کرتے ہوئے وہ وقت یا تو قیمتی بن رہا ہے یا ضائع ہو رہا ہے. اب کیسے کہہ سکتے یار گپ شپ لگانا ہے, آؤ بیٹھو باتیں کریں گے. ایسے کوئی کام ہے؟ کوئی دنیا اور آخرت کے بھلے کا کام ہے. یعنی حدیث پاک دیکھیے کتنی تعمیری زندگی گزارنے کا ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یعنی کاموں کو ترک کر دینا یہ انسان کے حسن اسلام سے. یعنی وہ کام جس کا نہ دین کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اس کو کہتے ہیں لا یعنی کام. نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضول کام, لا یعنی کام, جس کا کوئی مقصد نہیں. ان سے بچنے کا کہا گیا ہے, اس سے رکنے کا کہا گیا ہے. پر ہم ایک گپ شپ لگانے میں بیٹھے ہوئے ہیں. فضول کلام کی عادت بد یہ وقت ضائع کرتی ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس طرح جو پہاڑ دیکھے, نے ہریالیاں دیکھی, نے یہ دیکھے, اس کے فضول کلامی پر جو امام غزالی نے کلام کیا ہے نا, اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. امیل سنت نے اپنا ایک رسالہ اس میں ایک اصطلاح دی ہے ابو الفضول. ایک اصطلاح دی ہے ایک شخص ہے ابو الفضول, یعنی کہ وہ شخص جو فضول باتیں کرتا ہے, لمبی چوری سٹوریا کرے گا. اتنا بھائی میں گھر سے اتنے بجے نکلا, ٹرین میں بیٹھا, کراچی اتنے بجے پہنچ گیا. نہیں اس سے تو اس سے تو ہاضمہ اس کا صحیح نہیں ہوگا. اس کا ہضم ہوگا کیسے جب تک وہ سارا پیٹ شریر نکالے گا؟ اب اس کا تو نکلا سو نکلا, اپنا جو ٹائم نکل گیا اس کا کیا؟ ابلامہ ابن جوزی علیہ رحمہ کی بات یاد آ گئی. جو فضولیات اور لغویات والی جن کو عادت تھی آپ ان کی صحبت سے پناہ مانگا کرتے تھے. ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو اپنا بھی جو وقت برباد ہوگا اس کا کیا؟ تو جن کو فضول باتیں, لمبی باتیں کرنے, لمبا چوڑا لینے کی عادت ہے نا, ان کو اس میں بڑی عبرت حاصل کرنی چاہیے. اپنے وقت کو بچائیں. ایک بار اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کہنے والے کے لیے اللہ جنت میں درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ چار کلمات چار جنت میں درخت. ایک بار درود پاک پڑھو اللہ دس رحمتیں نازل. ایسے اوراد و وظائف کی جتنے فضائل بیان کرو کم رو, اتنے فضائل. بولتا ٹائم ہی ٹائم ہے. ارے بھائی نہیں ہے ٹائم, جنت کی تیاری کرنی ہے, آخرت کی تیاری کرنی ہے, قبر کی تیاری کرنی ہے. بولتا ٹائم ہی ٹائم ہے. کتابوں میں لکھا ہے جنتی جنت میں جانے کے بعد جس بات پر حسرت کرے گا وہ ہوگی جو اس نے دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر وقت گزارا تھا نا, یہ اس پر حسرت کرے گا. جنتی جنت میں جانے کے بعد. اللہ پاک ہمیں فضول کلامی سے بھی محفوظ فرمائے. پھر اپنے اندر منظم نہ ہونا, سوچ منتشر ہوتی ہے کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, اس کی کوئی بھی ترتیب نہیں ہے, کوئی مینیج نہیں کیا. اس سے لوگ اپنا وقت برباد کر دیتے ہیں, سوچنے میں وقت برباد کر دیتے ہیں. یہاں جائیں گے یار یہاں سے نہیں جانا تھا, یار وہاں سے جانا تھا. ابے گھر سے نکلتے ہوئے سوچ لیتے رہے روٹ کیا لینا ہے, پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کس سے کرنا ہے, نہیں پتا ہوتا. ایک ورڈ ہے کتابوں میں لکھا ہے ضابطہ بند سوچ. یاد کر لیجئے گا اس ورڈ کو, انشاءاللہ یاد کام آئے گا. ضابطہ بند سوچ, وہ سوچ جو کسی نظام کے تحت بند ہوتی ہے. منتشر المزاج لوگ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں, ڈیسیجن ہی نہیں لے پاتے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, بیٹھے رہیں گے تو یہ بھی اپنا وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں. پھر किसी से कुछ सीखकर या औरों के तजर्बा से फायदा उठाने के बजाय हर चीज का खुद तजर्बा कर लेना। मैं करूंगा, मैं समझूंगा। अरे भाई वो कर चुके हैं ना, हाफिज मिल्लत हजरत अल्लामा अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुबारक पूरी, अल्लाह पाक इनकी तुर्बत तक करो, रहमत नाजिल फरमाए। क्या कमाल की बात फरमाते, फरमाते हैं औरों के तजर्बा से फायदा उठाकर अपने वक्त को बचाओ। हम अपनी तजर्बात करने के लिए बैठे। फिर एक फरमाया, मकबूल बनने का शौक बेजा, ये वक्त जाया करता है। मुझे लोग जाने, मुझे लोग पहचाने, ये सेल्फी ने तो ये सारे राज खोल के रख दिए, शोहरत के लिए पता नहीं कहां कहां निकल जाएंगे। और अपने वक्त को इतना जाया करते हैं, ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी है, ऐसी बनानी है, यूं जाना है, एक दो मिनट की चीज बनानी है उसके लिए आधा पौना घंटा निकाल देते हैं। हाँ, अगर किसका कोई सही मकसद है तो ठीक है, अगर सही मकसद नहीं तो वक्त बर्बाद होना है। फिर एक बड़ी काम की बात लिखी, वक्त की कमी का रोना रोने वाला भी वक्त बर्बाद कर रहा होगा। यार वक्त नहीं है, वक्त कहां से होगा? तो ये वक्त की अहमियत को समझने के लिए इस हदीस पाक को हमेशा अपने पेश नजर रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें हैं जिनमें लोग बहुत घाटे में यानी नुकसान में, तंदुरुस्ती और फरागत। अगर सेहत है तो सेहतमंद आदमी अपने वक्त को बर्बाद कर रहा होता है, नेकी छोड़कर पता नहीं उल्टे सीधे कामों में लग जाता है, इबादत की तरफ नहीं आता। और फरागत के, फरागत है, फुर्सत है तो करने के काम नहीं करता, ना करने वाले कामों में पड़ जाता है। अल्लाह पाक कुरान करीम में कामयाब लोगों की जो सिफात और कामयाब लोगों की जो खूबियां बयान फरमाता है कुरान करीम सूरह मोमिनून की आयत नंबर 3, कि वो लोग हैं जो बेहुदा बात की तरफ इल्तिफात नहीं करते, देखते तक नहीं है बेहुदा और फजूलियात की तरफ, अपने काम से काम रखते। मेरे कुछ जानने वाले हैं माशाअल्लाह, दलालु खैरात पढ़ने का इनका अल्लाह की रहमत से इनका रुझान है। दलालु खैरात जबरदस्त किताब है, बड़ी बरकत वाली किताब है, और पढ़ते हैं इश्क रसूल बढ़ता है और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक, बड़े फजाइल है उसके अंदर, और बड़ी खूबसूरत किताब है दलालु खैरात। तो दलालु खैरात मैं इनको देखता हूँ कई मरतबा, मेरा जब देखना होता है, इनके पास फुर्सत नहीं है क्योंकि इनको पूरे दिन में वो पूरा हिस्सा पूरा कर रहा है। जहां फुर्सत मिली मोबाइल में या कहीं से भी निकाल के इन्होंने दलालु खैरात पढ़नी शुरू कर देनी है, ताकि इनका उस दिन जो पढ़ना पढ़ लेना, दिन निकल जाएगा तो इनका वो टाइम निकल जाएगा। मैंने सिर्फ दलालु खैरात पढ़ने वाले की ये कैफियत है। अब जिसको पूरा पारा पढ़ना है, कुरान पढ़ना है, तफसीर पढ़नी है, हदीस पढ़नी है, शरीयत सीखनी है, यानी फर्ज उलूम सीखने हैं, वो बोलता है मेरे पास टाइम ही टाइम है, कहां से टाइम है। अब यकीन माने मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो इस्लामी बहनें सुन रही हैं, अगर आपने पूरे दिन का जदवल बना लिया है, इबादत का जदवल, दुरूद पाक, औरात व वज़ाइफ, और जो जो मैं कह रहा हूँ नमाज फराइज और वाजिबात के साथ साथ कि ये करना है, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, यानी वक्त पूरा हो जाएगा मगर आपका काम पूरा नहीं होगा। कहाँ मोबाइल, कहाँ सोशल मीडिया, आप बोले क्या करो, इसको देखूंगा तो मेरा कुरान रह जाएगा, इसको देखूंगा तो दुरूद पाक रह जाएंगे, इसको देखूंगा ये रह जाएगा। तसाहुल कहते हैं सुस्ती वगैरह का जो मिजाज होता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ का ये हिस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल इज्ज़ी वल कसल, ए अल्लाह मैं कमजोरी और सुस्ती से तेरी पनाह तलब करता हूँ। कमजोरी और सुस्ती से, कल कर लेंगे यार, बाद में कर लेंगे, अरे क्या इतनी जल्दी है, कर लेंगे ना, बैठे तो दो, अरे भाई क्या कल कर लेंगे, आज के काम पूरे हो नहीं रहे, कल क्या करेंगे यार। कभी भी इस तरह ना सोचे, एक लिस्ट बना ले कि मेरी यही आदतें बुरी हैं, मेरी यही आदतें गलत है। माशाल्लाह यहाँ बयान सुनेंगे, मदनी मुजाकरा तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह ताला हमारे सामने अच्छी और बुरी आदतों की लिस्ट बन जाएगी, फहरिस्त बन जाएगी, ये अच्छी आदत है, ये बुरी आदत है, और एक तय कर ले मैंने अपनी बुरी आदतों को निकालना है और अच्छी आदतों को लेना है। इस्लामी बहनें भी घरों पर बैठी हुई नियत करें, रियाजत करनी है, कोशिश करनी है, फोकस करना है और अपने मोबाइल से जान छुड़ानी है। अगर वो कुरान पढ़ रहा है तो मैं क्यों नहीं, ये सोच पैदा करनी है हम, ताकि हम नेकी करने में और नेकी के साथ जिंदगी गुजारने में कामयाब हो जाएं। अपनी जिंदगी में प्यारे समयो तवाजुन पैदा करें, इत्तदाल पैदा करें। ऐसा नहीं बिल्कुल खाने में गए तो खाने में चले गए, मोबाइल में गए तो मोबाइल में चले गए, नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इबादत में भी इत्तदाल है, अमीरी में भी इत्तदाल है, गरीबी में भी इत्तदाल है। इत्तदाल बैलेंस, मियाना रवि। अल्लाह पाक प्यारे हबीब के सदके में हमें वक्त की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, अपने वक्त को बिल्कुल बांध कर रखे कि वक्त, ये वक्त पास करने के नाम पर इधर उधर वक्त जाया ना करें। अल्लाह करीम हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नेकी के साथ जिंदगी गुजारना नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहि खातमी नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वली वसल्लम सल्लू अलल हबीब।
Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stair. Mubarak for you is my prayer. May you keep ascending success stair.